ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ,
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 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
आज हम श्रीमद् भागवतम के अनुसार परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं नौवें स्कंद में और दसवें अध्याय में दी गई हैं, उनका आगे वर्णन करते हुए हम कल की बात थोड़ी बता देना चाहते हैं कि कल हमने ये सुना कि जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण भी वहीं नहीं थे, तो दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया जिस तरह गडेरिये की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है. तब रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस तरह घूमने लगे मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो. इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित की. लेकिन भगवान हम मनुष्य जैसी लीला करके अपने को मनुष्य स्थापित नहीं करना चाहते. सारे जगत का नियंता सर्वसत्ताधीश इत्यादि जाहिर करना चाहते. हम उल्टा समझे या ना समझ होकर यदि ऐसा समझे कि देखो ना हमारे जैसे हैं, भगवान होते ही भी अपनी स्त्री से भी छुड़ करके एक स्त्री अनुरक्त एक औरत के पीछे पागल जैसा वर्तन करते हैं. नहीं नहीं, ऐसी विरह की वेदना वास्तविक रूप से देखा जाए तो भगवान कभी अपनी अंतरंग शक्ति से बिछुड़ नहीं सकते, न तो कोई बिछुड़ने का और छुड़वाने का प्रयत्न कर सकता. जगत में ऐसी कोई ताकत नहीं जब भगवान और भगवान की शक्ति को अलग कर सके. इसके पीछे रामचंद्र जी दुष्ट रावण का वध करना चाहते थे, इसलिए अपनी अंतरंग शक्ति सीता जी को एक मर्यादा में बांधकर उल्लंघन न कर सके ऐसी परिस्थिति की बात समझाते हुए लक्ष्मण के पास सौंप जाते हैं और सीता के लिए वो हिरण लाने के लिए वो अकेले चल पड़ते हैं. ऐसा नहीं कि दुष्ट रावण की तरकीब ये थी कि वो मरीच नाम का अपना दुष्ट मित्र को हिरण बनाकर स्त्री यानी कि सिर्फ स्त्री को लुभायमान कराने के लिए ऐसा करे. नहीं नहीं, भगवान तो सबके अंतर्यामी हो, सब जानते हैं कि ये दुष्ट रावण के हृदय में क्या चल रहा है. भगवान परमात्मा है, क्या रावण के हृदय में परमात्मा नहीं थे? लेकिन रावण की पहचान नहीं थी. भक्त तो समझता है कि ये दुष्ट रावण के हृदय में भी भगवान बस सकते हैं, क्यों नहीं. तो रावण के मन में क्या चल रहा है भगवान के लिए जानना क्या नामुमकिन है? बहुत आसान है. इसीलिए रावण जो कुछ करें उसे पहले रामचंद्र जी तैयार हो जाते हैं कि इस ढंग का काम होगा इस ढंग से, क्योंकि भगवान सर्वात सत्ताधीश है, इनकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता. जहां तक शक्ति का परिचय है तो देखो शक्ति अकेले टिकती नहीं, शक्तिमान का आश्रय लेना ही पड़ता है. आजकल की स्त्रियां परदेश का अनुकरण करके अपने को स्वतंत्र बनाना चाहती है या कम से कम पुरुषों से इक्वल राइट मूवमेंट में जाना चाहती है. लेकिन ना समझे ये इक्वल राइट मूवमेंट पैदा करने वाला भी कौन है पता है? पुरुष है, स्त्री नहीं है। स्त्री को भड़काव देकर उसको स्वतंत्र बनाकर स्वच्छंदी बनाना चाहता है। स्वच्छंदी और सचमुच ऐसा ही हो रहा है, कभी इक्वालिटी के स्तर पर आ ही नहीं सकती। मेरे पास एक बड़ा लेख है, ये शायद मैं 2 साल पहले कहीं जा रहा था तो विमान में कई मैगजीन होती हैं, तो एक न्यूजवीक मैगजीन में हमें काफी मिला, तो हमारे पास हमने संग्रहित कर लिया, क्योंकि इसमें लिखा था कि यूरोप में, सारे यूरोप में ये पश्चिमी अनुकरण करने वाली स्त्रियां वास्तविक में स्वतंत्र हुई हैं या पुरुष की बराबर इक्वल राइट्स में चली है। आप ताज्जुब करोगे तो वहां की स्त्रियां बहुत बिछुड़ी हुई है, पिछले वर्ग में पड़ गई है। ऐसा है कि कई औरतें बिजनेस में जाती हैं, पुरुषों के साथ अपनी तालमेल करने लगती हैं, और ये बिजनेस में जब स्त्रियां शादी करती हैं तो जो जो बिजनेस में पड़ी हुई औरतें को सरकार के द्वारा लंबी छुट्टी दे देते हैं, लंबी छुट्टी, आ मत यहां वापस, जहां तू और पगार ले ले, लेकिन पड़ी रहे वहां, बच्चे पाल। एक ऐसी संस्कृति, और औरतें समझ रही कि देखो हमारा वट है, हम महीनों नहीं सालों भर की छुट्टी में जा सकते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन पैसे कमाकर उनको आगे नहीं लाने देते हैं, घर में ही रखेंगे, जब बच्चे पाल, बेबी सीट कराकर, नहीं तो जा चर्च में, आगे मत आ। ऐसे ऐसे तुम्हारे, और ज्यादातर औरतों के जो तनख्वाह होती है तो इतनी एवरेज में कम आती है कि पुरुष उसे 2 गुना कमा लेता, तो यानी कि पैसे के दबाव से भी स्त्रियों को नीचे दबाए रखे। ये सारे यूरोप में ये हालत है, उसका स्टेटिस्टिक देकर बहुत सारे कंपनियों में जो ये पॉलिसी चल रही है उसका घटस्फोट किया। प्रभुपाद जी यहां स्त्रियों की रक्षा के लिए जो जो सुविधाएं, ये रामचंद्र जी के चरित्र द्वारा हमें जो कुछ समझाना चाहते हैं उस पर गौर करो। देखो इसमें ये कहा गया है कि रावण द्वारा सीता का अपहरण असंभव था। रावण द्वारा हरी गई सीता माया सीता थी, देवी सीता का भ्रामक स्वरूप है। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो यह माया सीता भस्म हो गई और असली सीता अग्नि से बाहर आ गई। इस उदाहरण से हमें एक दूसरी शिक्षा मिलती है कि इस जगत में कोई स्त्री कितनी ही बलवती क्यों ना हो, सर्वसत्ताधीश बनकर वो प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना बने, इंदिरा गांधी जैसी या गोल्डा मायर जैसी, अभी अमेरिका में वो हिलरी क्लिंटन बनना चाहती है। अब देखो कि इस जगत में कोई स्त्री कितनी ही बलवती क्यों ना हो, उसको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, अन्यथा असुरक्षित होने पर उसे रावण जैसा राक्षस भगा लेगा जाएगा। इस श्लोक में आगत वैदेह राज दुहितरी शब्द सूचित करते हैं। ये वैदेह राज यानी कि जनक, सीता का पिता, और उसकी दुहितरी यानी बेटी, राजा की बेटी, यानी कि वो कोई मामूली औरत थोड़ी थी। विदेह राज यानी जनक, विदेह प्रदेश का राजा, लेकिन वास्तव में भी वो विदेही था। भगवान का विशुद्ध भक्त होकर उन्होंने भगवान की राज्य करने द्वारा जो सेवा की है इससे वो मुक्त थे, एक विशुद्ध भक्त की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इनका शरीर इतना पवित्र था कि वो आध्यात्मिक कहलाता था। आध्यात्मिक शरीर द्वारा भगवान की भक्ति हो सकती है, अपनी भक्ति से शरीर आध्यात्मिक हो सकता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक शक्ति है उसे जो छूता है वो भी इलेक्ट्रिक्यूटेड हो जाता है, लेकिन उसमें जो शक्ति, ये आदमी को छूने वाला भी करंट मारने लगता है। यानी कि ये शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति में प्रसार हो सकती है, लेकिन भौतिक शक्ति को भौतिक न रखकर वो स्वयं आध्यात्मिक बन जाती है। इसलिए भक्ति की शक्ति हम चाहे ऐसे स्थूल से करें फिर भी आध्यात्मिक बन सकते हैं। सिर्फ हमें अपनी शक्तियों को भगवान की शक्ति के साथ जुड़ाना चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए। तो चाहे ये कितनी भी पिता द्वारा सुरक्षित थी और रामचंद्र जैसे भगवान द्वारा सुरक्षित थी, कितनी बलवान होगी उसकी शक्ति का माप कोई है? सीता प्रत्ये जो बुरी नजर रखने वाला रावण कभी का मर चुका था, सीता में इतनी ताकत थी, लेकिन भगवान रामचंद्र जी लीला कर सके इसलिए उसकी लीला में कैसे भाग दे, कैसे सहयोग दे। इसलिए उसको माया सीता का स्वरूप दे दिया और असली सीता भगवान ने अपने हृदय में रखी, जो अग्नि परीक्षा द्वारा वापस आ गई थी। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं सुनो, के वैदेह राज दुहित्री शब्द सूचित करते हैं कि भगवान रामचंद्र से ब्याहे जाने पर पूर्व सीता जी अपने पिता विदेह राज द्वारा सुरक्षित थी और विवाह हो जाने पर अपने पति का संरक्षण प्राप्त था। अतएव हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्त्री की सुरक्षा सदैव होनी चाहिए। वैदिक नियमानुसार स्त्री के स्वतंत्र यानी असक्षम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन करके वो अमृतसर में सुवर्ण मंदिर पर हल्ला बुला दिया था। उसको ये भान नहीं रहा क्योंकि उसके दो बॉडीगार्ड जो सिख थे उन्होंने गोली चलाकर उसको खत्म कर दिया। धर्म से जो च्युत होता है, अलग होता है, तो उसकी सुरक्षा चली जाती है। तो माया सीता द्वारा हमें यह समझना चाहिए कि हम भी तो माया के पुतले हैं, हमारे में इतनी पवित्रता कहां आई है कि हम चाहे बहुत पवित्र होते हुए भी हमारी सुरक्षा का कोई प्रबंध तो होना ही चाहिए। स्त्री शक्ति है, काली चंडी भी बन सकती है, सिर्फ देह के प्रलोभन द्वारा दूसरे को भ्रामक ख्याल में पहुंचाने तो माया का काम भी कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है वो स्वतंत्र रहे। शक्ति शक्तिमान को अधीन होती है, शक्ति बिना शक्तिमान का परिचय नहीं मिल सकता। तो जिस ढंग से शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए कि हमें भगवान की पहचान हो, शक्ति हमारी है ही कहां पहले, सब उधार लेकर आए हैं और कर्जे पर कर्जा डालकर हम जन्म मरण के चक्कर नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। अब आगे देखें, भगवान रामचंद्र जी ने जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी तथा शिव जी द्वारा पूजित हैं मनुष्य का रूप धारण किया था, अतएव उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया जिसे रावण ने मारा था। तत्पश्चात भगवान ने कबंद नामक असुर को मारा और वानर राजों से मैत्री स्थापित करके बाली का वध किया तथा सीता देवी के उद्धार की व्यवस्था करके समुद्र तट पे गए। समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र जी ने 3 दिन तक उपवास किया और वे साक्षात समुद्र के आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब समुद्र नहीं आया तो भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की और समुद्र पर दृष्टिपात करते ही समुद्र के सारे प्राणी जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे भय के मारे उद्विग्न उठे। तब शरीर धारण करके डरता हुआ समुद्र पूजा की सारी सामग्री लेकर भगवान राम के पास पहुंचा। उसने भगवान के चरण कमलों में गिरते हुए इस प्रकार कहा, हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण या नहीं जान पाए कि आप कौन हैं, किंतु अब हम जान पाए हैं कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी अक्षर तथा आदि परम पुरुष हैं। देवता लोग सतोगुण से, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमोगुण द्वारा अंधे हो जाते हैं, किंतु आप इन समस्त तीनों गुणों के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी प्रजापति हैं, वो रजोगुण के अवतार कहलाते हैं। शिव जी तमोगुण के अवतार होते हैं। ये दोनों गुणों में फंस सकते हैं, आपको कहानी तो पता है। शिव जी बिचारे इतने भोले हैं कि भगवान का भजन में यदि कोई भंग करे उसे बजाए और उसको कह दें जा चल कुछ आशीर्वाद चाहिए लेकर, लेकिन हट जा, जान छोड़ मेरी, क्या चाहिए तुझे। तो एक असुर शिव जी का भक्त था, वृकासुर, सही ना। वृकासुर ने क्या किया, पार्वती को पाने के लिए शिव जी का तप कर रहा है। बेवकूफ नंबर एक क्या कर रहा है, देखो ओम नमः शिवाय का जाप करके अपने शरीर की आहुति देता है, छोटा छोटा अंग पहले काट कर डालता है, बाद में उसने दिखा के इतनी आहुति देने पर भी शिव जी नहीं आते, चलो मैं ही कूद पड़ू। तो शिव जी बिचारे बोले बाबा, वो कहें कह रहे भैया ये क्या कर रहा है, इतनी तपश्चर्या मुझे बुला रहा है, मेरा भगत है, लेकिन शिव जी जानते नहीं कि ये तमोगुण से भरा हुआ आदमी। तो शिव जी फंस गए, बोल क्या वरदान चाहिए। तो वो तो डांटने लगा, शिव जी जरा देर करते तो तुम्हारा भगत चला जाता और तुम्हारा नाक कटता। तो कहने कि हमें जो वरदान की इच्छा है इसलिए तो मैं अपना सारा सर्वोच्च नोछावर करना चाहता हूं। तो शिव जी कहे कि भैया ऐसी तो कैसी बात है, बता दे वरदान दोगे, कि कहां दूंगा। तो शिव जी जिसके हाथ पर जिसके मस्तक पर मैं हाथ रखो ना उसके मस्तक का 1000 टुकड़ा हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। शिव जी कहे जा जान छोड़ ले जा, जा। लेकिन कहे कि ठहरो ठहरो, मैं तो आपके मस्तक पर ही मैं अजमाइश करना चाहता हूं। शिव जी फंस गए, दौड़ने लगे भागने लगे। भगवान ने देखा कि कुछ गड़बड़ी हो गई है, चलो तो वो छोटे बालक का स्वरूप लेकर आए और कहने लगे, वो शिव जी को छुपा दिया और ये वृकासुर के सामने आ गए कि ओ चाचा जी कहां दौड़े भागे जा रहे हो। चाचा जी तू कौन है, मेरा भतीजा, कहां से आया। छोटे बालक की वाणी देखकर उसको भरमा दिया और कहने लगे मेरे पिताजी और आपके पिताजी सबे सके भाई हैं, ये वो भी पता नहीं है, भूल गए, कुछ न कुछ मामला गड़बड़ी वाला है। अरे बताओ मामला क्या है, अरे तूने शिवजी को यहां कहीं जाते देखा। के पागल, शिवजी तो पागल हैं, उनका भरोसा क्या, कहीं यही सारा दिन घूमता फिरता ही रहता है। तो क्या ऐसी बात हुई, उनके पीछे पड़ने की क्या आवश्यकता है, और पागलों का भरोसा, और आप जैसे बुद्धिमान और मेरे चाचा होते हुए आपको इनके पीछे दौड़ने की क्या आवश्यकता रही। हाँ तो सच कह रहा है, पागल है क्या? हाँ क्या बात है, तो उसने वरदान दिया, झूठ है क्या? कौन सा वरदान? तो मैंने उनके पास ऐसा वरदान मांगा कि जिसके मस्तक पर हाथ रखो 1000 टुकड़े हो जाएं। अरे होता है कैसा, मस्तक में 1000 टुकड़े से बना भी नहीं है तो 1000 टुकड़े होंगे कैसे, 38 टुकड़े से बना है, ज्यादा नहीं तो है, ऐसा है। तो मैंने तो ऐसा मांग लिया और उन्होंने क्या कहा, हाँ, बाद में भागने लगे। मैंने सोचा मेरे से डरते हैं, नहीं नहीं नहीं, वरदान देते पागलपन आ जाता है। जो कोई वरदान देता है तो उसके पास शक्ति चली जाती है, और बिना शक्ति पागल हो जाता है आदमी, यूं त्यों वो शक्ति के पीछे घूमता है, सही ना? तो भरोसा मत रखो, ऐसे वरदान कभी सफल नहीं होते, और 1000 टुकड़े तो होंगे ही नहीं, तो ऐसा है। तो तू कैसे जानता है? अरे चाचा जी आप ही जानते हैं कि हम एक ही परिवार से आए, और अपने पिता यानी कि मेरे दादाजी, इनकी तो महत्ता देखो, कितने प्रख्यात हैं, इतने तपस्वी हैं, इतने जानकार हैं, उन्होंने तो अपने परिवार में सिखाया है कि ऐसे ऐसे वरदान कोई सफल होते नहीं, और खातरी करना हो तो लगाओ हाथ पर, देखो कितने आप सक्षम होंगे, सुरक्षित रहोगे, कुछ मरता मरता। तो सच में तो कहता हूं, ऐसे डांस करके करो तो उसी तरह ब्रह्मणा में बुलाकर उसने अपने मस्तक पर ही हाथ रख लिया और टुकड़े 1000 हो गए। बाद में शिव जी आए कि भगवान आपने तो सचमुच मुझे बचा लिया। शिव जी तमोगुण से प्रभावित होने की क्या आवश्यकता है, आप तो तमोगुण के अवतार हैं, लेकिन अवतार होते ये शिव तत्व ऐसा है कि आशुतोष है, आशुतोष यानी कि बहुत आसानी से वो राजी हो जाते हैं, तो कोई भी छोटा मामूली भक्त भी उनको राजी कर देते हैं, क्योंकि शिव जी भगवान का नाम जब जो करते हैं माला पर उसमें हरकतें नहीं चाहते किसी की, इसीलिए दे देते हैं जो आया दे देते हैं, न पात्र पात्र का विचार करते हैं, बहुत बड़े हृदय वाले हैं, लेकिन हमेशा 3 गुणों इनके आसपास घूमते रहते हैं, और इससे बचने के लिए वो माला करते हैं, तो वो अपनी स्थिति जानते हैं, लेकिन गुणों का प्रभाव इन पर पड़ता है, जबकि विष्णु पर नहीं पड़ता, ब्रह्मा जी पर भी पड़ता है। ब्रह्मा जी रजोगुण के स्वामी है, वाक नामक एक बेटी पैदा की, और इतनी सुंदर कि ब्रह्मा जी खुद पागल हो गए और इनके पीछे दौड़ने लगे। तभी ये ऋषि मुनियों ने कहा, चार कुमार इत्यादि तो पैदा हो गए थे प्रजापति ब्रह्मा द्वारा, तो उन्होंने डांट मारी, ए पिताजी आप भी पागल हो गए, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो ब्रह्मा जी ने ब्रेक मारी, मैं क्या कर रहा हूं। तो ये रजोगुण का प्रभाव देखो ब्रह्मा जी को भी सताता, लेकिन विष्णु त्रिगुणातीत हैं, कोई प्रभाव से रंजित नहीं होते, इसलिए भगवान होते हैं। भगवान गुणों में कभी प्रविष्टते नहीं। तो जब रामचंद्र जी सीता के विरह में हमारे जैसे गुणों के प्रभाव में आकर यदि वर्तन करते तो रामायण की महत्ता क्या होगी, वो रावण को मार भी कैसे सकते थे। इसीलिए हमें जो समझना है वो समझने की कोशिश करो, ये तत्व है, सही ना? तो इस ढंग से ये समुद्र कह रहा है इसमें अपने आप को समुद्र का देवता कौन होता है? वरुण देव। वरुण देव आए, माफी मांगने लगे। रामचंद्र जी ने जब क्रोध प्रकट किया तो ये कह रहे हैं कि हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण यह नहीं समझ पाए कि आप कौन हैं। देखो, ये देवता लोग भी भगवान के परम तत्व को जानने में सफल नहीं होते, इसीलिए वो जानते पहले तो चुनौती देते हैं, अरे कौन होता है बड़ा, यहां आकर क्या कर रहा है, हमारा अधिकार, यानी कि ये वरुण देवता पानी का देवता है, वो उसका साम्राज्य पानी है, पानी में वैसे वैसे किसी को घुसने नहीं देता। तो रामचंद्र जी इनके पास अपेक्षा करते कि सामने आ जा, नहीं आया तो क्रोध बताया, आता है कि नहीं, नहीं तो एक तीर लगाऊंगा तेरा सारा जल सुखा दूंगा, धमकी दी। तब घबरा के आ गया, तो वरुण देव के हम लोग मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि को संस्कृत में जड़ धीय कहला है। जड़ धीय शब्द पशु बुद्धि का सूचक है, पशु बुद्धि। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता, पशु बिना मार खाए मनुष्य के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। किसी प्रकार जो जड़ बुद्धि है वे भगवान को नहीं समझ पाते, किंतु तीन गुणों के द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित होने पर वे भगवान को समझने लगते हैं। हिंदी में एक वो कथन आता है कि दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई, सुख में जो हरि भजे तो दुख का है को है। जड़ बुद्धि है ना, इसलिए हम दुखी होते हैं। यदि भगवान की भक्ति करते हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते समगुण समतित्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं यदि कोई मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है, व्यभिचारी यानी मनमानी या किसी आधार बिना की, किसी प्रमाण बिना की हम भक्ति करते रहते हैं तो उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति भी नहीं होती। तो जो अव्यभिचारी भक्ति करता है तो ये तीनों गुणों को लांग सकता है, पार हो सकता है। सारी माया तीन गुणों द्वारा संचालन करती है। माया ही यस्य जगदंड सतानी सूते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमाना सत्वावलंबी पर सत्वम विशुद्ध सत्वम गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजामि। ये ब्रह्मा की अक्ल जब ठिकाने आती है तब वो भगवान को इस ढंग से बचते, और इन की शिक्षा द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय हरे कृष्ण संघ में भी हमें ब्रह्मा जी के द्वारा ये शिक्षा मिलती है। इसीलिए एक गुरु शिष्य परंपरा ब्रह्मा से शुरू है। तो दुखी होने पर वो व्यक्ति मंदिर में जाता है और भगवान को पूजने जाता है, किंतु ऐश्वर्यवान होने पर भगवान को भूल जाता है। अतएव भौतिक प्रकृति द्वारा मानव समाज को दंडित करना भगवान के लिए अनिवार्य है। भौतिक प्रकृति ही हमें दंडित करती है, भगवान नहीं करते। भगवान ने उसके एजेंट को दे दिया है, जा उनको पिटा कर। हे प्रभु, आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं, निसंदेह आपके इसे पार करके उसी रावण को रावण की पुरी में जा सकते हो जो उपद्रवी है और तीन जगतों को रुलाने वाला है। रावण का अर्थ है जो सताता है, जो सबको रुलाता है, वो रावण कहलाता है। ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वह विश्ववा का पुत्र है किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर आपके दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। ये वरुण देव भगवान रामचंद्र जी की पूजा करके कहते हैं। अब देखो इसके पीछे रावण के चरित्र के बारे में क्या कहा है। कहा जाता है कि पुत्र तथा मूत्र एक ही स्रोत यानी कि जननेन्द्रिय से निकलते हैं। जब पुत्र भगवत भक्त या बड़ा विद्वान होता है तो पुत्र जन्म के लिए वीर्य स्खलन सार्थक होता है, किंतु यदि वह अयोग्य हुआ तो अपने कुल का नाम रोशन नहीं करता तो वह मूत्र के बराबर हो जाता है। यहां पर रावण की उपमा मूत्र से दी गई है क्योंकि वह तीन लोगों को में उपद्रव कराने वाला था। इस तरह देहधारी समुद्र ने इच्छा व्यक्त की कि भगवान उसको मारे। भगवान रामचंद्र का एक गुण है उसकी सर्वशक्तिमत्ता। भगवान चाहे तो भौतिक अवरोधों या असुविधाओं की परवाह न करते हुए कर्म करें। यानी कि ये समुद्र की आवश्यकता क्या थी रामचंद्र जी को, वह स्वयं शक्तिमान है। इच्छा करते ही रावण क्यों नहीं मर जाता, मर सकता है, लेकिन लीला का महत्व तो अपने भक्तों को साथ में लेकर कुछ नाटकबाजी करें उसमें मजा आती है। क्योंकि ये नाटक हमारे जीवन में भी लागू होते हैं, तभी तो हम नाटक का एप्रिसिएशन कर सकते हैं। जब कोई नाटक देखने जाए, जब कई हकीकत इसमें जब बताई जाती है तो हमारे जीवन को लागू होती है, इसलिए हम नाटक के साथ अपना तादात्म्यता बनाते रहते हैं। यूं देखो तो भगवान रामचंद्र सर्वशक्तिमान है, इच्छा करते ही रावण की मृत्यु हो सकती थी, क्या असंभव है क्या? फिर भी रावण को मारने के लिए, ऐसे नाटक करने के लिए वरुण देव को भी डांट मारी। भगवान की महत्ता जानने के लिए भगवान अपने आप ही नाटक करते हैं कि ये कैसे सर्वशक्तिमान है, क्योंकि हमें शक्ति का तो परिचय थोड़ा सा होता है, लेकिन थोड़े से शक्ति के परिचय से हम भगवान को भी थोड़े से ही शक्ति वाले मानते हैं, गलती कर बैठते हैं। इसीलिए भगवान को नाटक करने की आवश्यकता होती है। भौतिक अवरोध हो या असुविधाएं की परवाह न करते हुए कर्म करें, किंतु यह सिद्ध करने के लिए कि वे ईश्वर हैं और ईश्वर के तौर पर मात्र विज्ञापित नहीं हुए थे, यथा जनादेश पर निर्वाचित नहीं हुए, यानी कि लोगों के मतों के अनुसार भगवान को भगवान का पद देना ये भगवान के लिए नहीं है, भगवान तो होते ही है। हम मनुष्य इनको भगवान बनाने वाले कौन है, हमारे में कोई ताकत नहीं। जो खुद नहीं हो सकता तो भगवान को भगवान मनाने में उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। भगवान तो होते ही हैं और वो अपनी ताकत सिद्ध करते ही रहते हैं। आजकल किसी ऐसे कृत्रिम ईश्वर को खड़ा करने का फैशन बन चुका है जो असामान्य कार्य नहीं कर सकता। मूर्ख व्यक्ति थोड़े से जादू से ही चमत्कृत होकर कृत्रिम ईश्वर चुन बैठता है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि ईश्वर कितना शक्तिशाली होता है। किंतु भगवान रामचंद्र जी ने पत्थरों को तैराकर समुद्र पर पत्थर का पुल बनवाया, यह प्रमाण है कि ईश्वर की असाधारण अद्भुत शक्ति का। आज भी वो पुल मौजूद है, पता है आप लोगों को? भगवान रामचंद्र जी ने 175,000 साल पहले त्रेता युग में जब अवतरित हुए थे और लंका पर विजय कराने के लिए जो पुल बनाया था आज भी पुल मौजूद है। ये करीबन 2003 की साल में नासा ने अपने सैटेलाइट द्वारा पिक्चर लिया, हमारे पास 11 पिक्चर है। अखंडित पुल आज भी मौजूद है, सुनामी आई फिर भी टूटा नहीं है। देखो सिर्फ समुद्र के नीचे दिखाई देता है और फोटो में तो बहुत स्पष्ट। यानी कि ये क्या रामायण की कथा कोई कपोल कल्पित बातें हैं? ये कोई कोई फलद्रुप खोपड़ी से पैदा हुआ? ना ना, जब हम विश्वास रखते हैं तो विश्वास के पीछे प्रमाण भी होता है और प्रमाण निकलता ही रहता है। इसीलिए भगवान के बारे में अंधा विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं होती, विश्वास पुरवार करना पड़ता है। तो हम रामचंद्र जी को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने पुल बनाया, और कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं कि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन उठा लिया था। हकीकत आज भी गोवर्धन मौजूद है। और आजकल के बन बैठे तथाकथित भगवान को कहो कि छोटी सी पिंकी पर एक थोड़ा सा पत्थर भी उठा के बताएं। कोई बबूती निकालता है, कोई थोड़ी सोने की अंगूठी निकालता है, कोई हवा में उड़ता है थोड़ा सा, कोई पानी पर चलने का दावा करता है। क्या ये भगवान है क्या? यदि भगवान है तो भगवान जैसी लीला करके बता। अरे कहीं भगवान तो ऐसे बेचारे व्हीलचेयर में अभी घूमते हैं क्योंकि उठा नहीं जाते, सही? और हॉस्पिटल बनाते हैं और भगवान अपना मंदिर या संस्था चलाने के लिए अगरबत्ती का व्यापार करते हैं। अरे ये कैसे भगवान? नहीं नहीं, यदि भगवान पर विश्वास है तो भगवान की ये त्रिगुणातीत जो इनकी अवस्था है उनको समझ करके करना। एक सामान्य मनुष्य जिसका शरीर टट्टी पेशाब इत्यादि द्वारा ही खदबत्ता है वो भगवान नहीं बन सकता। जानकारी ठीक ढंग से हमें प्राप्त करना होता है, अंधा विश्वास रखने की कोई आवश्यकता नहीं, नहीं तो हमारा जीवन बेकार जाता है। मनुष्य जीवन बारंबार थोड़ा मिलता है, सही ना? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यत वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को त्याग करने के बाद फिर से इस जगत में जन्म नहीं लेता अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान के कार्यकलाप सामान्य नहीं होते, वे दिव्य रूप से अद्भुत होते हैं और अन्य किसी जीवधारी द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। भगवान के कार्यकलापों के सारे लक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं और उन्हें समझने के बाद ही भगवान को यथार्थ रूप में ग्रहण किया जा सकता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल में उन पर्वत श्रृंगों को फेंककर जिनके सारे वृक्ष बंदरों द्वारा हाथ से हिलाए गए थे, समुद्र के ऊपर पुल बना चुकने के बाद भगवान रामचंद्र सीता देवी को रावण के चुंगाल से छुड़ाने के लिए लंका गए। रावण के भाई विभीषण की सहायता से भगवान सुग्रीव, नील, हनुमान इत्यादि वानर सैनिकों के साथ रावण के राज्य लंका में प्रविष्ट हुए, जिसे हनुमान ने पहले ही भस्म कर दिया था। आप देखो कहां रावण की सेना जिनके पास अद्यतन शस्त्र इत्यादि थे, और कहां बंदरों की सेना जिनके पास हाथों की शक्ति और पत्थर, पहाड़ और वृक्षों के अलावा कोई साधन ही नहीं था। बंदर सैनिकों ने वृक्षों से ढके बड़े बड़े पर्वत श्रृंगों को लाकर समुद्र में फेंका, जो ईश्वर की परम इच्छा से तैरने लगे। भगवान की इच्छा से ही आकाश में अनेक अनेक बड़े बड़े ग्रह भी तर रहे हैं। और वो तो कितने बड़े हैं, वो क्यों नहीं गिर पड़ते? ये देखो आकाश में कितने तारे और कितने ग्रह अपनी भ्रमण कक्षा में भगवान की आज्ञा से घूम रहे हैं और आज्ञा का बिल्कुल उल्लंघन नहीं करते। तो ये पत्थर तिराना क्या बड़ी बात है क्या? जब भगवान की इच्छा से हो रहा है इतने सारे ग्रह, हम तो आदमी एक छोटा सा स्पुटनिक कितनी देर तक तरा सकते हैं? गिरता है नीचे, 10-15 साल रहता है, खत्म हो जाता है। देखो वो स्पेस लैब बनाई है, उसमें रिपेयर करने के लिए 5 बार तो जा चुके हैं, वो गिरने की तैयारी है। एक तो गिर गई है, ये दूसरी है। यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं विजामि। जिन शक्ति की आज्ञा में रहकर ये सारे भौतिक ग्रह तर रहे हैं, तो इन शक्ति की ही आज्ञा से ये पत्थर नहीं तरे? बड़ी बात क्या है इसमें? अब समझ में आता है भगवान की आज्ञा। अतएव भगवान रामचंद्र जी के लिए हिंद महासागर के ऊपर उन बंदरों सैन्यों की सहायता से जो बड़े बड़े पर्वत श्रृंगों को लाकर जल में फेंक रहे थे, पुल बनाना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। यह केवल इसीलिए अद्भुत लगता है क्योंकि इस भगवान रामचंद्र जी के नाम तथा यश को अमरत्व प्रदान करता है। भगवान रामचंद्र अपने हृदय में कितने सालों से इनकी गाथा चल रही है, भक्ति का हृदय अभी भी भारतीयों में धबक रहा है, तो भक्ति ऊपर उठाने की आवश्यकता है। अंधश्रद्धा से भक्ति सिद्ध नहीं होती, हमें उसका पालन करना होता है। ये पश्चिमी देश लोग हमें बेवकूफ बनाकर हमारी विरासत छीन लेना चाहते हैं, वह कहां तक हम बैठे रहेंगे? अपने फर्जंदों को यह सिखाना हमारा मूल कर्तव्य होता है। लंका में प्रवेश करने के बाद सुग्रीव, नील, हनुमान आदि वानर सेनापतियों के नेतृत्व में वानर सैनिकों ने सारे विहार स्थलों को, अन्न के गोदामों को, खजानों को, महलों के द्वारों, नगर के फाटकों, सभा भवन, महल के छत्रों और यहां तक कि कबूतर घरों में भी अधिकार कर लिया। जब नगरी के सारे चौराहे, चबूतरे, झंडे तथा गुंबदों पर रखे सुनहरे गमले ध्वस्त कर दिए गए, तो समूची लंका नगरी उस नदी के सदृश प्रतीत हो रही थी जिससे हाथियों के झुंड ने मथ दिया हो। ये वर्णन दूसरे रामायण में नहीं मिलेगा। एक विशुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, इसमें तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, ये अध्यात्म है। जब राक्षसपति रावण ने वानर सैनिकों द्वारा किए जा रहे उपद्रव को देखा, तो उसने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक नरांतक तथा अन्य राक्षसों एवं अपने पुत्र इंद्रजीत को भी बुलवाया। तत्पश्चात उसने प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन और अंत में कुंभकर्ण को बुलाया। इसके बाद उसने अपने सारे अनुयायियों को शत्रु से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। लक्ष्मण तथा सुग्रीव, हनुमान, गंधमाद, नील, अंगद, जांबवान तथा पनस नामक वानर सैनिकों से घिरे हुए भगवान रामचंद्र ने उन राक्षस सैनिकों पर आक्रमण किया जो विविध अजय हथियारों से तथा तलवारों, भालों, बाणों, प्रासों, कष्टियों, रुष्टियों और शक्ति बाणों, खड़गों तथा तोमरों से सज्जित थे। अंगद तथा रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने शत्रुओं के हाथियों, पैदल सैनिकों, घोड़ों तथा रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत श्रृंग तथा गदा और बाण फेंके। इस तरह से रामचंद्र जी के सैनिकों ने रावण के सैनिकों का, जिनका सौभाग्य पहले से ही लूटा जा चुका था, सीता देवी के द्वारा, उन्होंने सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही ध्वस्त हो चुका था, प्रभुपाद जी ये सैनिकों की सामर्थ्यता के बारे में बताते हैं। सो मच बक्स गोइंग कि भगवान रामचंद्र जी ने जंगल में जितने सैनिकों की भर्ती थी वे बंदर थे और उनके पास रावण के सैनिकों से लड़ने के लिए समुचित साज सामान न था, क्योंकि रावण के सैनिकों के पास आधुनिक युद्धास्त्र थे जबकि बंदरों के पास फेंकने के लिए पत्थर, पर्वत श्रृंग तथा वृक्ष थे। केवल भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण कुछ बाण चला रहे थे क्योंकि रावण के सैनिक माता सीता के शाप से ध्वस्त हो चुके थे, अतएव सारे बंदर उन्हें केवल पत्थर एवं वृक्ष चलाकर मारने में ही समर्थ हो सके। बल दो प्रकार का होता है, दैवी तथा पौरुष यानी कि पुरुष बल। दैवी बल आध्यात्म से प्राप्त किया जाता है और पुरुषाकार बल अपनी वृद्धि, बुद्धि तथा शक्ति से प्राप्त किया जाता है। अध्यात्म बल भौतिकवादी बल से सदैव श्रेष्ठ होता है। भगवान की कृपा पर अवलंबित होकर मनुष्य को अपने शत्रु से युद्ध करना चाहिए, भले ही वे आधुनिक शस्त्र हथियारों से युक्त क्यों न हो। इसलिए ही कृष्ण भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते तो युद्ध कर। पांडवों के पास भी इतनी सेना थोड़ी थी, भगवान की सारी सेना, भगवान ने न लड़ने का वचन दिया था ना कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं लड़ूंगा नहीं, हथियार उठाऊंगा नहीं। तो दुर्योधन ने कहा कि भगवान ऐसे करो ना, आप तो लड़ते नहीं जाओगे, नहीं तो मैं तो आपको ही अपने पक्ष में लेने आया था, तो आप नहीं जाओगे तो आपकी सेना मुझे दे दो। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, ए अर्जुन देख ये तो मांग रहा है, तू छोटा है, मांगने का तो पहला तुझे अधिकार होता है। तो दुर्योधन के ना 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 केशव, मैं पहले आया हूं, मेरा पहला नंबर है, जो पहले आया तो उसका नंबर पहले लगता है। तो भगवान बोले, अर्जुन क्या कहना है तुझे? तो अर्जुन बोला, भगवान उसे मांगने दो। तो दुर्योधन ने यह प्रस्ताव रखा, दुर्योधन कह रहा है कि भगवान आपने लड़ने की प्रतिज्ञा नहीं ली है और आपके सैनिक तो बेकार हो जाएंगे, ऐसे करो ना मुझे दे दो सैनिक। तो भगवान कहते जा भैया ले जा, तो वो तो खुश होकर चला गया। उसको अपने विजय पर, अपने बाहुबल और अपनी ये सैनिक की ताकत पर अभी काफी गर्व हो रहा है। तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन देखो ये सब कुछ ले गया। तो अर्जुन ने कहा, भगवान आपको तो थोड़ा ले गया, आप हमारे पक्ष में रहो, इतना काफी है। तब भक्ति यानी कि भगवान पर कैसा विश्वास है अर्जुन का, उसकी पर प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि चलो मैं लड़ूंगा नहीं, तो तेरे साथ में तेरा साथी बनकर तेरा सारथी बनकर आऊंगा। अर्जुन ने वो भी स्वीकार कर दिया। जब भगवान स्वीकार करते हैं कि ऐसी सेवा करूं मेरे भक्त की कि दुनिया भी अचंभे में पड़ जाए, भगवान ने निश्चय कर दिया था इन सबको मार देना। यहां भगवान की शक्ति सीता देवी ने सारा निश्चय किया इन सबको खत्म करो, हो ही गए। भगवान की इच्छा शक्ति कितनी बलवान होती है पता। तो ये सब सदैव हमें अपना अध्यात्म के बल पर ही अपनी आत्मा की ताकत पर ही हमें विजय प्राप्त हो सकती है। तत्पश्चात जब राक्षस राज रावण ने देखा कि सारे सैनिक मारे जा चुके हैं तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ, अतएव अपने विमान से सवार हुआ जो फूलों से सजाया हुआ था, पर रामचंद्र जी की ओर बढ़ा और इंद्र के सारथी मातली द्वारा लाए गए तेजस्वी रथ पर आसीन थे। तब रावण ने भगवान रामचंद्र पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की। भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम मानव पक्षियों में अत्यंत गर्हित हो, निसंदेह तुम उनकी विष्ठा के तुल्य हो, तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि वह घर के मालिक के न होने पर रसोई से खाने की वस्तु चुरा लेता है। तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया है, इसलिए जिस तरह यमराज पापी व्यक्तियों को दंड देता है उसी तरह मैं तुझे दंड दूंगा। अब तुम अत्यंत नीच पापी तथा निर्लज्ज हो, अतएव आज मैं तुम्हें दंड दूंगा क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, न च दैवात परम बलम, कोई भावी बल दिव्य शक्ति के पार नहीं कर पाता। रावण इतना पापी तथा निर्लज्ज था कि उससे इतना पता नहीं था कि रामचंद्र जी की लादिनी शक्ति माता सीता का अपहरण करने का क्या फल होगा। यही राक्षसों का अवगुण है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदहानु अनिश्वरम। राक्षसों का इसका ज्ञान नहीं है कि भगवान सृष्टि के शासक हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ संयोगवश उत्पन्न हुआ है और उसका न तो शासक न कोई राजा न कोई नियंता, इसलिए अपने आप बढ़ते हैं। इसलिए वे स्वतंत्र होकर स्वेच्छा से कर्म करते हैं और इस हद तक पहुंच जाते हैं कि लक्ष्मी जी तक का अपकरण कर बैठते हैं। निसंदेह यह रावण की यह नीति कितनी भौतिकवादी के लिए अत्यंत घातक है, यह नीति से बचना। रावण की ये जो नीति है इसे भौतिकवादी सभ्यता का विनाश ही होता है। तो भी नास्तिक लोग राक्षस हैं, अतएव गणित से गणित कर्म करते रहते हैं जिसके लिए अवश्य ही दंडित होते हैं। धर्म भगवान के आदेशों से युक्त है और अतएव जो भी इन आदेशों का पालन करता है वो ही धर्मी कहलाता है, जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता वो अधर्मी है और उसे दंडित होना पड़ता है। इस प्रकार रावण को धिक्कारने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण रखा और रावण का निशाना बनाकर बाण छोड़ा जो रावण के हृदय में वज्र के समान भेद गया। इसे देखकर रावण के अनुयायियों ने चिल्लाते हुए तुमुल ध्वनि की, हाय हाय क्या हो गया, क्योंकि रावण ने अपने 10 मुखों से रक्त वमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिर पड़ा जिस प्रकार कोई पुण्यात्मा अपने पुण्य खत्म हो चुकने के बाद स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरता है। क्षीणे पुण्य वर्त्य लोके विशन्ति। भगवान हरेक की इच्छा पूर्ण करते हैं। रावण की ये इच्छा के सब शक्ति हासिल कर ले, वो भगवान से विरुद्ध इच्छा करते हुए भी भगवान इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार है, वो करते हैं, लेकिन पुण्य खत्म हो जाता है तो जिन पुण्यों के आधार पर रावण राजा बना, लंका की नगरी सोने की बनी, क्या जाहोर जला लिया, क्या स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड होगा जो सोने की लंका में रहता है। लेकिन दुष्कर्मों के कारण वो पुण्य का संचय खत्म होता है, पुण्य खत्म होता है तो मरने की तैयारी करनी ही पड़ती है। तो हर एक व्यक्ति सोचे अपने पाप और पुण्य का भागीदार तो उसे बनना ही पड़ता है। लेकिन भक्ति कार्य न तो पाप में आता है न पुण्य में आता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं किसी का पुण्य का सृजन नहीं करता, मैं न ही किसी का पाप का सृजन करता हूं। वो तो जो कर्म करता है उनको भुगतना पड़ता है, न तो कोई मुझ पर दोषारोपण कर सकता है क्योंकि मुझे कर्मों के फल पर कोई आसक्ति नहीं। लेकिन मूर्ख लोग मुझे दोषित ठहराते हैं, ओ भगवान मेरा ही देखा नहीं, मेरे पर कितनी समस्याएं खड़ी कर दी, मैं तो आपका भक्त हूं, भक्तिन हूं, क्या बात है, सबका देखते हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, मेरी ही नहीं करते। भगवान पर दोषारोपण, नहीं नहीं, भगवान जानते हैं, भगवान हम हर एक के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, तो क्या हर एक की परिस्थिति पर पूर्ण जानकारी इनकी है तो हमारा दावादारी बहुत झूठा निकलता है। अवश्य हमें भगवान ने जो परिस्थिति में हमें रखा है तो उसमें भगवान का शुक्रिया मानना चाहिए, शुक्र गुजार करना चाहिए, भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम काम क्रोध इत्यादि द्वारा लोभ में घुसपैठे और भगवान पर दोषारोपण करने लगे, हमारे में कोई ताकत नहीं। अरे एक तो हमने कर्जा किया है, ऊपर सरजोरी करते हैं, कैसी बात है? दूसरे शब्दों में चोरी पर सरजोरी, एक तो चोरी करते हैं, भगवान की सारी शक्ति लेते, भगवान को कुछ देते नहीं और ऊपर से भगवान को दोषारोपण करते हैं, ये ठीक नहीं। यानी कि पुण्य खत्म हो जाता है ऐसा अपराध करने से। भगवद गीता में नौवें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति, जब पुण्य फलों का क्षय हो जाता है तो स्वर्ग का भोग करने वाले पुनः पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इस जगत के सकाम कर्म ऐसे ही हैं कि चाहे कोई पुण्य करे या पाप, उसे इस संसार के भीतर भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहना होता है, क्योंकि पाप या पुण्य के द्वारा बारंबार जन्म मृत्यु की माया के चुंगल से छुटा नहीं जा सकता। रावण को किसी तरह समस्त ऐश्वर्यों से युक्त महान साम्राज्य का राजपद मिल गया था, किंतु सीता देवी का अपहरण जैसा पाप करने के कारण उसके सारे पुण्य कर्मों के फल विनष्ट हो गए थे। यदि कोई किसी महापुरुष का, विशेषतया भगवान का अपमान करता है तो वह निसंदेह अत्यंत अधम हो जाता है और अपने पुण्य कर्मों के फल से विरहित होकर रावण तथा अन्य राक्षसों की भांति नीचे गिर जाता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठे और समस्त उपाधियों से रहित शुद्ध अवस्था में रहे। सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मलता पवित्रता कब आती है, ये सारी पाप पुण्यों की उपाधियों से हटो, दूर हो जाओ और एक सिर्फ भगवान पर ऐसी आस्था बनाकर भगवान की शरणागत होकर जैसी स्थिति में हमने अपने कर्मों द्वारा प्राप्त हुई है उसमें संतोष मांगकर जीवन जीने का प्रयत्न करें। आज अपने ईमेल में एक बड़ा संदेश आया, भारत सरकार ये किसान को, छोटे किसानों को ताड़ित करना चाहती है। वो समझ रही है कि बहुत सारी जमीन ये छोटे किसानों के पास है जिसकी उपज ज्यादा नहीं है, लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। जो बड़े बड़े खेतों करते हैं, एकड़ों की खेती जब एक साथ में करते हैं तो उपज का परिणाम कम होता है और उसमें इतना खर्चा होता है तो जो आमदनी होनी चाहिए तो कम होती है, जबकि छोटे किसान द्वारा जमीन की सुरक्षा सब प्रकार की होती है। यानी कि हम कुदरत के नियमों का उल्लंघन करके हम अपना सत्यानाश बुलाने के लिए उद्यत हो चुके हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, सरकार भी इसमें जिम्मेदार बन रही है और भविष्य में इतनी समस्या खड़ी कर सकती है। ये तो साइंस ने रिसर्च करके बताया कि ऐसा भारत सरकार करने जा रही है, और ये जो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और सब जो फिनिस्टर हैं, ये सब बोल रहे हैं। यानी कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होने वाला है तो उल्टी ही मति पैदा होती है। रावण का विनाश होने वाला था तो उल्टी मति पैदा हुई, सीता जैसी पवित्र स्त्री का अपहरण कर बैठा। तो आजकल की सरकार भी विनाश काले विपरीत बुद्धि की ओर जा रही है। कुदरत के कानून को कोई चुनौती नहीं दे सकता, मनुष्य को कुदरत के कानूनों से छूटने में कोई शक्ति नहीं, क्योंकि कुदरत भी भगवान की शक्ति है और भगवान की सेविका है, भगवान की इच्छा के अनुसार काम करती है, तो अवश्य उसकी ही विजय होगी, साइंस की नहीं होगी। यानी कि रावण मर गया, तत्पश्चात वे सारी स्त्रियां जिनके पति युद्ध में मारे जा चुके थे, रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ लंका से बाहर आई। वे निरंतर विलाप करती हुई रावण तथा अन्य राक्षसों के शवों के निकट पहुंची। लक्ष्मण के बाणों द्वारा मारे गए अपने अपने पतियों के शोक में अपनी छाती पीटती हुई स्त्रियों ने अपने अपने पतियों का आलिंगन किया और फिर वे कारुणिक स्वर में रोदन करने लगी, जो हर एक व्यक्ति को द्रवित करने वाला था। हे नाथ, हे स्वामी, तुम अंधों की मुसीबत की प्रतिमूर्ति थे, अतएव तुम रावण कहलाते थे, किंतु जब जब तुम पराजित हो चुके हो, हम भी पराजित हो गए, क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को शत्रु ने जीत लिया है। बताओ न, अब लंका किसकी शरण में जाएगी? रावण की पत्नी मंदोदरी तथा अन्य पत्नियां बलिभाली जानती थी कि रावण कितना क्रूर व्यक्ति है। रावण शब्द का अर्थ है जो अन्यों को सताता है। रावण निरंतर अन्यों को मुसीबत में डालता रहा, किंतु जब उसके पाप कृत्यों की पराकाष्ठा सीता देवी के कष्ट देने तक पहुंच गई तो भगवान रामचंद्र द्वारा मार डाला गया। हे परम सौभाग्यवान रावण, तेरा अभी सौभाग्य जागृत हुआ है क्योंकि भगवान के हाथों से तू मरा है। हे परम सौभाग्यवान, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे, अतएव तुम सीता देवी के प्रभाव तेज को नहीं समझ सके। तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता जी के शाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो, ये मंदोदरी जैसी सती जानती है। मंदोदरी रावण की पत्नी होते हुए भी ये पांच सतियों में मानी जाती है। द्रौपदी सती है, सीता सती है, मंदोदरी सती है। ऐसा नहीं है कि केवल सीता देवी ही शक्तिशाली थी, अपितु कोई भी स्त्री सीता देवी के पदचिन्हों पर चलकर ऐसी शक्तिशाली बन सकती है। वैदिक साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां भी हम आदर्श सती स्त्रियों का वर्णन पाते हैं सीता जी का नाम उसमें अवश्य मिलता है। रावण की पत्नी मंदोदरी भी परम सती थी। इस प्रकार द्रौपदी भी 5 उच्च सतियों में से एक है। जिस प्रकार मनुष्य को ब्रह्मा नारद जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए उसी प्रकार हर एक स्त्री को भी सीता मंदोदरी द्रौपदी जैसे आदर्श स्त्रियों के पथ पर अनुसरण करना चाहिए। सती रहकर अपने पति के प्रति आज्ञाकारिणी बनकर स्त्री अपने को दैवी शक्ति से संपन्न कर सकती है। यह नैतिक सिद्धांत है कि मनुष्य के मन में पराई स्त्री के प्रति विषय वासना की भावना नहीं लानी चाहिए। मातृवत परदारेषु बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि पराई स्त्री को अपनी माता के तुल्य देखें। चाणक्य श्लोक में भी आदेश है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जो पराई स्त्री को अपनी माता की तरह पराय धन को धूल के समान तरह सारे जीवों को अपने समान मानता है वह पंडित माना जाता है। इस तरह रावण न केवल भगवान रामचंद्र द्वारा अपितु अपनी ही पत्नी मंदोदरी द्वारा धिक्कारा गया क्योंकि वह सती स्त्री थी। अतएव वह अन्य सती की विशेषतया सीता देवी जैसी पत्नी की शक्ति को जानती थी। मंदोदरी कहती है हे राक्षस कुल के हर्ष तुम्हारे ही कारण अब लंका राज्य तथा हम सबों का भी कोई संरक्षक नहीं रहा। तुमने अपने कृत्यों के ही कारण अपने शरीर को गीधों का आहार और अपनी आत्मा को नरक जाने का पात्र बना दिया है। नास्तिकों की ये नारकीय जीवन में गति होती है। रावण की पत्नी मंदोदरी सती होने के कारण सब कुछ जानती थी। यद्यपि वह अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी किंतु वह जानती थी कि उसके शरीर और आत्मा का क्या होगा। क्योंकि भले ही हम लोग भौतिक आंखों से यह न देखें किंतु ज्ञान की आंखों से देखा जा सकता है। यानी कि मंदोदरी ज्ञानी थी रावण अंधा था। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। वैदिक इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिसमें मनुष्य के ईश्वर विहीन होने पर प्रकृति के नियमों द्वारा हर्षित होना पड़ता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि रावण के पवित्र भाई तथा रामचंद्र जी के भक्त विभीषण को कौशल के राजा भगवान रामचंद्र से अनुमति प्राप्त हो गई तो उसने अपने परिवार के सदस्यों को नरक जाने से बचाने के लिए आवश्यक अंत्येष्टि कर्म संपन्न किए। ये जो श्राद्ध का जो तर्पण है वो नरक से बचाने के लिए होता है। किंतु भगवान रामचंद्र जी के सलाह से रावण के भाई विभीषण ने मृतक के लिए निर्धारित सारे संपन्न किए थे। इस तरह भगवान रामचंद्र रावण की मृत्यु के बाद रावण पर बहुत दयालु थे। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र जी ने सीता को अशोक वन में शिंशपा नामक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया में बैठी पाया। वे राम के वियोग के कारण दुखी होने से अत्यंत दुबली पतली हो गई थी। अपनी पत्नी को उस दशा में देखकर भगवान रामचंद्र अत्यधिक दयाद्र हो उठे। जब वे पत्नी के समक्ष आए तो वे भी अपने प्रियतम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके कमल सदृश मुख से आह्लाद झलकने लगा। भगवान रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका के राक्षसों पर एक कल्प तक राज्य करने का अधिकार सौंप कर सीता देवी को पुष्प से सज्जित विमान में बैठाया और फिर वे स्वयं उसमें बैठ गए। अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर हनुमान सुग्रीव तथा अपने भाई लक्ष्मण समेत भगवान अयोध्या लौटाए। जब भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौटे तो मार्ग पर लोकपालों ने उनके स्वागतार्थ उनके शरीर पर सुंदर सुगंधित फूलों की वर्षा की और ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महापुरुषों ने परम प्रसन्न होकर भगवान के कार्य का गुणगान गाया। अयोध्या पहुंचकर भगवान रामचंद्र जी ने सुना कि उसकी अनुपस्थिति में उनका भाई भरत गौमूत्र में पकाए जौ को खाता था, अपने शरीर को वृक्षों की छाल से ढकता था, सिर पर जटा बढ़ाए कुशों की चटाई पर सोता था। अत्यंत कृपालु भगवान ने इस पर अत्यधिक संताप व्यक्त किया। जब भरत जी को पता चला कि भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौट रहे हैं, तो तुरंत ही वे भगवान की खड़ाव अपने सिर पर रखे और नंदीग्राम स्थित अपने खेमे से बाहर आ गए। भरत जी के साथ मंत्री, पुरोहित, अन्य भद्र नागरिक, मधुर गायन करने वाले पेशेवर गवैये तथा वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने वाले विद्वान ब्राह्मण भी थे, जिनके पीछे जुलूस में रथ में जिनमें सुंदर घोड़े जूते थे, जिनकी लगामें सुनहरी रस्सियों की थी। ये रथ सुनहरी किनारी वाली पताओं तथा अन्य विविध प्रकार की पताकाओं से सजे गए थे। सैनिक सुनहरे कवचों से लैस थे, नौकर पान सुपारी लिए थे और हाथ में अनेक विख्यात सुंदर वेश्याएं भी थी। भगवान का आगत स्वागत करने में भगवान की भक्त ऐसी वेश्याओं भी उस समय मौजूद थी। जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हस्तिनापुर आए, थोड़े दिन पांडवों के बीच रहे और बाद में द्वारका चले, तो वहां भी उनका स्वागत करने में वेश्याओं भी थी। ये वारांगना कहलाती है। सिर्फ कामुक वासनाओं के लिए ही जो वेश्याएं होती हैं, वो वेश्या और वैदिक संस्कृति में ऐसे भी व्यक्तियों के लिए लोकार्षण करने के लिए उस समय में भी वेश्याएं मौजूद थी, लेकिन उनकी भगवान के प्रति की जो भक्ति है, वह भक्ति सिद्ध करके बैठती थी। तो भगवान मौजूद थे तो भगवान के समक्ष ये भी बिना संकोच आती थी। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में पता है, अपीस चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्था। आत्मा की सम्यक व्यवस्था यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ की समानता वाला जो व्यवहार है, विरोधी व्यवहार नहीं, ये कोई भी कर सकता है। जब भगवान को कर्म लेपायमान नहीं होते हैं तो किसका बुरा कर्म किसका अच्छा कर्म उनको कैसे छू सकता है? समझ में आया? भगवान को कर्म लेपायमान नहीं करते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इतियो माम अभिजानाति कर्म भीर अपि न बध्यते। भगवान कहते हैं कि मैं जब मनुष्य जैसे रूप में आता हूं, मैं मनुष्य नहीं बनता, मनुष्य जैसे रूप में आता हूं और तब तब मैं ऐसे बहुत विलक्षण कार्य करके जाता हूं जो लीलाएं कहलाती है। वो लीलाएं वैसे सामान्य लोगों के लिए सामान्य कर्तव्य भी दिखाई देगा कि कर्म है, लेकिन कर्म के फल की मुझे स्पृहा नहीं। मैं तो अपना आदर्श बताने के लिए कार्य करता हूं और जो मुझे करना है, पृथ्वी का भार हल्का करना है, पापों का निवारण करना है, साधुओं की रक्षा करनी है, इसलिए बारंबार आता हूं क्योंकि ये मेरा धर्म है, ये मेरा संसार है, मैंने बनाया है और आप सभी मेरे हैं, मेरे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या वेश्याओं में के हृदय में भगवान नहीं होंगे? लेकिन ये वेश्याएं भी भगवान की भक्त थी। यानी कि सामान्य मनुष्य अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग का तत्व नहीं जानते कि कितना भी दुराचारी क्यों न हो आदमी, लेकिन यदि उनकी आत्मा की स्थिति सम्यक है, भगवान के साथ तादात्म्यता वाली है और भगवान की प्रीति के लिए ही अपना सारा जीवन न्योछावर कर रहा है, तो वो वेश्या वेश्या नहीं रहती। भगवान की भक्त होती है। हा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसे व्यक्ति तुरंत ही क्षिप्रम यानी कि बिना ज्यादा समय लिए धर्मात्मा बनता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वसच्छान निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। वो सम्यक स्थिति के कारण तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। अरे भगवान का दर्शन करने के लिए वेश्या आती है तो अपना उद्धार करने आती है, भगवान का दर्शन करे कोई वेश्या रह सकती है? लेकिन क्या एक वेश्या भगवान के गुणगान नहीं सुनती क्या? हा? सुनती है, लेकिन वो दृढ़ निश्चय बन जाती है जब मौका मिलता है कि भगवान आ रहे हैं तो हम भी जाएंगे। समाज की लाज शर्म उसको नहीं लगी क्योंकि वो भक्त बन रही है। समाज की लाज शर्म हमें भक्त नहीं बना देती। शारीरिक भावना यानी कि त्रिगुणात्मक बुद्धि सत्व रज और तमोगुण में जो फंसने वाले इनकी बुद्धि से हम भक्त नहीं बन सकते। भगवान पर न्योछावर करना, भगवान की सर्वोपरि सत्ता को स्वीकारना, उनके आश्रय में रहना, उसकी कृपा में बने रहना, या जो कुछ आया वो सहन करने के लिए तैयार करना, लेकिन भक्ति कभी नहीं छोड़ना, भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना। तो भक्ति की स्थिति बहुत स्वतंत्र होती है इस समाज की जो रीत रसम पर वो आश्रय नहीं करती। नौ बज गए, टाइम हो गया। कहने का मतलब है भक्ति तत्व स्वतंत्र होता है। समाज की मर्यादाओं में हम भक्ति करते रहे, अरे कोई देख जाएगा माला हाथ में रखकर वो कहने लगेगा अरे बहुत बड़ी भक्तानी हो गई है, घर बार छोड़कर वैसे ही फर्ज का बांध नहीं और ऐसे ऐसे करने जाती। लेकिन भगवान की भक्ति में रोक टोक नहीं होता। प्रहलाद पिता को रोक रहा था ना, तो उसका सुना नहीं। और भरत शत्रुघ्न ने माता का सुना नहीं, कैकेयी का सुना नहीं, माता का त्याग कर दिया। गोपियों ने तो सब कुछ त्याग कर दिया, बच्चे थे इनका भी, हरि बोल मैं जा रही हूं। इस तरह ये भरत जी की भक्ति देखकर ये सभी लोग साथ में जा रहे हैं रामचंद्र जी का आह्वान करने के लिए। अनेक नौकर पैदल चल रहे थे और छाता चामर बहुमूल्य रत्न तथा उपयुक्त विविध राजसी सामान लिए हुए थे। यह इस तरह प्रेमानंद से आदर दय से एवं अश्रुओं से पूरित नेत्रों वाले भरत जी भगवान रामचंद्र जी के निकट पहुंचे और अत्यंत भाव विभोर होकर उनके चरण पर गिर गए। अभी कल हम ये सारा वृत्तांत देखेंगे और भगवान रामचंद्र सारे विश्व पर किस ढंग से राज करते हैं उनके बारे में सुनेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? घंटी तो बज गई है। हाँ,
अभी आपने कहा था भगवद गीता में कहता है कि यमयम वापी समान भाव जैसा ख्याल गति होता है।
हाँ,
तो ये जो अंत जो क्रिया जो करते पिंडदान ये कैसे हमको बता सकते?
अच्छा, पितृ तारयति इति पुत्र, नहीं तो मूत्र, बराबर ना। तो पिता का श्राद्ध करना पुत्र की जिम्मेदारी है और पू नाम का नरक होता है जो कैसे भी कर्म हो तो उसको नरक की गति से बचाने के लिए श्राद्ध करने की आवश्यकता है, जिसमें विष्णु यज्ञ करते हैं। विष्णु यज्ञ करते हैं और पिंड देते हैं, पिंड यानी शरीर जो आटे का बनता है उसमें डालते हैं और पिता को उसमें बुलाते हैं कि देखो ये पिंड था तुम्हारा, अभी तेरे नाम का ही पिंड फिर से मैं जलाता हूं, यानी कि इसकी आहुति यज्ञेश विष्णु के लिए मैं देता हूं, तो आप हरिनाम करो। ये सबसे बड़ा यज्ञ है, सही ना? तो यज्ञ भगवान की तरफदारी वाला यानी कि त्रिगुणातीत होना चाहिए, जिसके द्वारा आत्मा की स्पष्ट मुक्ति हो सकती है। जो यज्ञ में हरिनाम नहीं होता उसमें सत्व रज और तमोगुण का प्रभाव ही बना रहता है, और समाज को दिखाने के लिए समाज के डर से करते हैं। शास्त्र में शास्त्र की मर्यादा या उल्लंघन करने का डर नहीं, लेकिन समाज का डर है। तो यदि सिद्धांत के अनुसार हमें प्रमाण चाहिए कि पिता की सद्गति हुई है, तो इसमें तीन गुणों से परे उपाय के लिए ये विष्णु यज्ञ करना पड़ता है, पितृ यज्ञ कहते हैं, जो श्राद्ध कहलाता है। हर एक बेटे पर पिता का ऋण है, पिता का ऋण चलता है, क्योंकि इसको इस दुनिया में लाने के लिए पिता माध्यम बने, पिता यानी माता भी आ जाती है, तो पितृ ऋण होता है। बेटे को ऋण तो चुकाना है भौतिक, लेकिन आध्यात्मिक ऋण भी चुकाना होता है, क्योंकि तारण करना पितृ तारयति थी पुत्र, जब तारण नहीं कर सकता तो वह मूत्र, तारण न करने का साधन क्या है? सत्व रज और तमोगुण का प्रभाव। तारण करने का साधन क्या है? सच्चिदानंद। वो हमेशा यानी कि सत यानी सनातन अवस्था, जो पिता के आत्मा की सनातन अवस्था क्या है? वो भगवान का अंश है, भगवान का दास है, ये सनातन अवस्था है। उसकी जानकारी चित्त वो हरिनाम द्वारा जागृत करनी पड़ती है, और उसे उसे शांति मिलती है, आनंद मिलता है, उसका स्वभाव पुनः सच्चिदानंद जागृत होता है। इसलिए अध्यात्म का यानी कि ये कृष्ण भावनामृत का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें पूर्ण गारंटी मिलती है कि पिताओं का उद्धार होता है। एक विशुद्ध घर, एक विशुद्ध भक्त अपने परिवार में पकता है तो कितनी पेढ़ी तारता है? सात ऊपर की सात पीछे की, 14-14 पीढ़ियों तारता है। विशुद्ध भक्ति की बात है, यही एकमात्र साधन है पिताओं का तर्पण कर, यानी कि जो बेटा भक्त नहीं बना तो गया काम से। कहते हैं ना, हे माता जननी जन तो भक्त जन, यानी कि पैदा करना है बच्चा तो भक्त पैदा कर, क्या दाता क्या शूर, नहीं तो दानेश्वरी कोई पैदा कर, नहीं कोई तो कोई शूरवीर पैदा कर, यदि कुछ करने की ताकत नहीं तो वांझ रह जाए, मत पैदा कर, क्योंकि तेरा नूर मत गुमा, तेरा जो तेज है वो कभी गवा नहीं, क्योंकि स्त्री शक्ति धर्म रक्षक शक्ति है। ओ पिता जो बीज देता है वो धारण करती है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि धर्म की सारी विरासत जिम्मेदारियां उस पर बनी रहती। तो ये आध्यात्मिक स्तर पे वास्तविक तर्पण करने वाला पुत्र कहलाता है। चलो दो चार ब्राह्मणों को खिला दिया और दजा फरका दी, यज्ञ करवा दिया और फिर से वो गर्हित काम में चला जाता है, न खुद का उद्धार करेगा तो पिता का कैसे करेगा। तो यानी कि पितृ ऋण कौन चुकाएगा, मातृ ऋण कौन चुकाएगा। देवर्षि भूताप्त इंद्रणाम पितृणाम नायम किंकरो च नरपतिम च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिरत कृत्यम। एक ही व्यक्ति को कोई ऋण नहीं रहता, क्योंकि ये सारा ऋण चुका देता है भक्ति करने से, वो भक्त होता है। नहीं तो जबरदस्ती से हमें देवताओं का ऋण रहता है, पितरों का ऋण रहता है, अपने नौकर चाकरों का भी ऋण रहता है, अरे सारे जीव जंतुओं का भी ऋण रहता है। क्योंकि इस भौतिक दुनिया में रहना है तो इन लोगों को साथ में लेकर रहना पड़ता है, साथ में लेकर। इसलिए भगवान ने सारे जीवों को एक साथ में ही पैदा करवाया और यही जीवन में अन्य अन्य अपने कर्मों द्वारा अपनी इच्छाओं द्वारा हम अलग अलग शरीर प्राप्त कर सकते हैं। एक ही आत्मा 84 लाख योनि में भटकता है और ये सारा समूह जीवन है, हम अकेले ही थोड़े पैदा हुए हैं, भेड़ बकरी मुर्गी सभी पैदा हुए हैं। यदि हम सिटीजन है तो वो लोग क्यों सिटीजन नहीं, इन लोगों की कत्ल क्यों की जाती है। सही ना, तो ऋण है। एक सद्गृहस्थ का आदर्श जीवन हो तो उसमें यह लिखा गया, भागवत में आता है 7वें स्कंद में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि इसकी सारी जिम्मेदारी सब जीवों का पालन करने की सुविधा पूरी करने की। एक गृहस्थ की जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी बहुत आसानी से प्रसाद का वितरण यदि करे तो उसमें पूर्ण हो जाती है। हर एक को अपने समाज में ये प्रथा है कि सर्वप्रथम रोटी पकाते पहली रोटी किसकी, गैया की, बाहर कुत्ते को खिलाओ, जो आया उसे खिलाओ पहली रोटी। पता है हर एक घर में एक एक रोटी निकालकर कितनी रोटी बनती है। भारत में कई जगह लुधियाना में हमने देखा है बड़ी बड़ी गौशाला है और घर घर घूमती है लारी वाला और एक एक रोटी ले लेता है सबके पास और गैयाओं को खिलाता है, मामूली चीज। लेकिन ये संस्कार, ये ऋण का संस्कार है, पितृ ऋण होता है, ये पंचशुना यज्ञ करना पड़ता है। अरे दूसरों के लिए हॉस्पिटल खोलनी, हाँ ये भी ऋण का कारण है। बहुत सेठिया लोग बहुत कमाते हैं दूसरों का पसीना लेकर, तो क्या उन लोगों के लिए उसके सुखाकारी की सुविधा नहीं बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, धर्मशालाएं बनाए, रास्ता बनावे, या आदर्श गृहस्थ ये पंचशुना यज्ञ उनको जबरदस्ती करना पड़ता। लेकिन एक भगवान का भक्त यदि आदर्श हो तो इसको कोई ऋण बाकी नहीं, क्योंकि भगवान का ऋण चुकाने से सबका ऋण चुक जाता है। सही ना, इसीलिए यदि भगवान का ही एकमात्र ऋण रखे तो कितना जीवन आसान बन जाता है। हमें तो न टैक्स देना पड़ता है, न कमाई करनी पड़ती है, हमें तो देखो हम भी भटकते हैं लेकिन आराम से भटकते हैं। आप पसीना भटकते देखो हमें खिलाने के लिए 10 आदमी होंगे।